ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के महत्व पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभाव के बारे में भी चर्चा की। श्री मोदी ने सुझाव दिया कि शिक्षक विभिन्न भाषाओं में विद्यार्थियों को स्थानीय लोक कथाएं सुनाएं, जिससे विद्यार्थी कई भाषाएं सीख सकें और देश की जीवंत संस्कृति से परिचित हो सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षकों को विद्यार्थियों को देश की विविधता दिखाने के लिए शैक्षिक पर्यटन पर ले जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को सीखने में मदद मिलेगी और पर्यटन तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के सूरत में जल संरक्षण पहल जल संचय जन भागीदारी का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि जल संरक्षण सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास और पुण्य कार्य भी है। इस कार्य में उदारता भी है और जिम्मेदारी भी। प्रधानमंत्री ने आने वाली पीढ़ियों के लिए टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए जल संरक्षण प्रयासों में लोगों की भागीदारी पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि जल संरक्षण हमेशा से भारत की सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न अंग रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने आज जम्मू में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी संकल्प पत्र जारी किया। इसी के साथ पार्टी का चुनाव अभियान शुरू हो गया है। श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 अब इतिहास बन चुका है और इसकी वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आजादी से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। श्री शाह आज पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। वे कल जम्मू के पलूरा में एक रैली को संबोधित करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट आज कांग्रेस में शामिल हो गए। सुश्री फोगाट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के साथ खड़ी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली संदीप घोष की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। श्री घोष कोलकाता के इस कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोलकाता उच्च न्यायालय जांच की निगरानी कर रहा है और जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा है। सीबीआई वित्तीय अनियमितताओं और दुष्कर्म तथा हत्या दोनों मामलों की समानांतर जांच कर रही है। उधर भाजपा ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया है कि जिलाधिकारी ने उन्हें पैसे देने की पेशकश की थी। श्री पात्रा ने बताया कि पुलिस ने उन्हें एक सादे कागज पर हस्ताक्षर करने को भी कहा था। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया और तेलंगाना वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिए। समिति का गठन लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में किया गया है। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों से संबंधित प्रशासन और प्रबंधन को चुस्त दुरुस्त करना है। भारत और मालदीव के बीच पांचवीं रक्षा सहयोग वार्ता आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव गिरिधर अरामाने ने और मालदीव का नेतृत्व रक्षा बल के प्रमुख जनरल इब्राहिम हिल्मी ने किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा की। विभिन्न रक्षा सहयोग परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर भी बातचीत हुई। आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पूर्वी नौसेना कमान के नेतृत्व में नौसेना राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। अब तक 180 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रवीण कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में पुरूषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। प्रवीण ने 2.08 मीटर की कूद के साथ एक नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले दिलीप गावित 400 मीटर T47 दौड़ के फाइनल में पहुंचे। सिमरन शर्मा ने 200 मीटर T12 दौड़ के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। नौकायन में यश कुमार और प्राची यादव सेमीफाइनल में पहुंचे। भारत 6 स्वर्ण 9 रजत और 11 कांस्य सहित कुल 26 पदकों के साथ पदक तालिका में 14वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।